नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। इन द प्लेक्स स्टीवन लेवी की गूगल पर आधारित विस्तृत गैर कथात्मक कॉरपोरेट जीवनी और प्रौद्योगिकी इतिहास की पुस्तक है। यह बताती है कि स्टैनफोर्ड के शोध प्रकल्प से निकली कंपनी ने इंटरनेट खोज को कैसे बदला, विज्ञापन से विशाल कारोबार कैसे बनाया और फिर मोबाइल, वीडियो, क्लाउड कंप्यूटिंग तथा अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव कैसे फैलाया। लेवी को गूगल के भीतर असाधारण पहुंच मिली थी, इसलिए पुस्तक केवल उत्पादों की सूची नहीं बल्कि निर्णय लेने वाले लोगों, इंजीनियरिंग संस्कृति और संस्थागत विश्वासों का अंदरूनी अध्ययन भी है। इसका मुख्य प्रश्न है कि गूगल की असाधारण गति और विस्तार के पीछे कौन से कार्य सिद्धांत थे। उत्तर में पुस्तक तेज प्रयोग, तकनीकी दक्षता, डेटा पर भरोसा, खुलापन और बड़े जोखिम लेने की प्रवृत्ति को रेखांकित करती है। साथ ही यह कंपनी के सामने आए तनावों जैसे चीन में संचालन, नियामकीय दबाव, गोपनीयता और बढ़ते आकार के साथ नवाचार बनाए रखने की कठिनाई को भी दर्ज करती है। यह पुस्तक गूगल का उत्सव मात्र नहीं बल्कि इंटरनेट युग की एक केंद्रीय कंपनी को समझने का सुलभ रिपोर्टिंग आधारित दस्तावेज है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, इंजीनियरिंग मानसिकता ने गूगल के निर्णयों को कैसे दिशा दी। लेवी के विश्लेषण में गूगल की पहचान किसी पारंपरिक मीडिया या विज्ञापन कंपनी से पहले एक इंजीनियरिंग संस्था की है। उसके संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने वेब खोज की समस्या को विशाल सूचना संग्रह को क्रमबद्ध करने की तकनीकी चुनौती के रूप में देखा। इसी दृष्टि ने बेहतर एल्गोरिदम, विशाल कंप्यूटिंग अवसंरचना और लगातार मापे जा सकने वाले सुधारों को कंपनी के केंद्र में रखा। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि गूगल में राय, पद या वरिष्ठता से अधिक महत्व उस समाधान को मिल सकता था जिसे डेटा और तकनीकी तर्क समर्थन दे। इसका व्यावहारिक परिणाम तेज उत्पाद सुधार था, क्योंकि किसी विचार को लंबे अनुमोदन क्रम से गुजरने के बजाय परीक्षण के माध्यम से परखा जा सकता था। लेकिन इस मॉडल की सीमा भी है। जो चीज आसानी से मापी जा सकती है उसे प्राथमिकता मिलने का जोखिम रहता है, जबकि भरोसा, सामाजिक प्रभाव और गोपनीयता जैसे प्रश्न केवल संख्याओं से हल नहीं होते। लेवी का वर्णन दिखाता है कि इंजीनियरिंग मानसिकता ने गूगल को असाधारण दक्षता दी, पर कंपनी के सामाजिक प्रभाव बढ़ने पर उसी मानसिकता को व्यापक नैतिक और सार्वजनिक जवाबदेही के साथ जोड़ना आवश्यक हो गया। इसलिए पुस्तक तकनीकी प्रतिभा को अपने आप में पूर्ण समाधान नहीं मानती बल्कि उसे संगठनात्मक शक्ति और संभावित अंधेपन दोनों के स्रोत के रूप में रखती है। दूसरा, खोज से विज्ञापन तक उपयोगकर्ता सेवा और राजस्व का असाधारण संयोजन। गूगल की वृद्धि को समझने के लिए खोज और विज्ञापन के संबंध को समझना जरूरी है। पुस्तक बताती है कि कंपनी ने पहले लोगों को तेज और उपयोगी खोज अनुभव देने पर जोर दिया। इस उपयोगिता ने विशाल उपयोगकर्ता आधार बनाया। फिर खोज के इरादे से जुड़े विज्ञापन ने ऐसा राजस्व मॉडल दिया जिसमें विज्ञापनदाता मापने योग्य परिणामों के लिए भुगतान कर सकते थे और उपयोगकर्ता को अपेक्षाकृत प्रासंगिक विज्ञापन दिखाई दे सकते थे। इस व्यवस्था का महत्व केवल कमाई में नहीं था। विज्ञापन से आया धन गूगल को महंगे डेटा केंद्र बनाने, नए उत्पादों में निवेश करने और ऐसे क्षेत्रों में प्रयोग करने की क्षमता देता था जिनसे तत्काल आय नहीं आती थी। लेवी मॉडल को इंटरनेट अर्थव्यवस्था के निर्णायक मोड़ों में एक मानते हैं। फिर भी पुस्तक का व्यापक संदर्भ यह भी याद दिलाता है कि प्रासंगिकता के लिए डेटा की जरूरत बढ़ती है। जब किसी कंपनी के पास खोज, ईमेल, वीडियो और मोबाइल सेवाओं के माध्यम से व्यापक जानकारी हो, तब उपयोगकर्ता सुविधा और व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच तनाव अपरिहार्य बनता है। इसीलिए गूगल का विज्ञापन मॉडल केवल व्यावसायिक नवाचार नहीं बल्कि डिजिटल समाज में डेटा, ध्यान और शक्ति के संबंधों को बदलने वाली व्यवस्था है। तीसरा, तेज प्रयोग, 20% समय और उत्पाद निर्माण की संस्कृति। इन द प्लेक्स गूगल की कार्य संस्कृति को उसकी रणनीति से अलग नहीं मानती। कंपनी ने प्रतिभाशाली इंजीनियरों की कठोर भर्ती, पर्याप्त तकनीकी संसाधनों और अपेक्षाकृत खुली आंतरिक बहस के जरिए ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जिसमें नए विचार जल्दी सामने आए। 20% समय की चर्चित नीति इसी आदर्श का प्रतीक थी, जिसमें कर्मचारियों को अपने नियमित दायित्वों के बाहर रुचि के प्रकल्पों पर काम करने का अवसर दिया जाता था। जीमेल और एडसेंस जैसे उत्पादों को अक्सर इस प्रयोगशील संस्कृति के उदाहरणों के रूप में देखा जाता है। पर पुस्तक का गहरा बिंदु केवल सुविधाओं या कार्यालयी लाभों के बारे में नहीं है। वास्तविक तंत्र यह था कि छोटे परीक्षणों से उपयोगकर्ता, प्रतिक्रिया और डेटा जुटाया जाए, फिर सफल संकेत मिलने पर उत्पाद को बड़े स्तर पर फैलाया जाए। इससे असफलता को अंतिम हार के बजाय सीखने की लागत की तरह देखा जा सकता था। फिर भी हर प्रयोग सफल नहीं होता। गूगल की सामाजिक नेटवर्किंग पहल का संघर्ष दिखाता है कि विशाल संसाधन, उत्कृष्ट इंजीनियर और डेटा क्षमता भी तब पर्याप्त नहीं होते जब प्रतिस्पर्धी के पास मजबूत सामाजिक संबंधों का जाल और स्पष्ट उत्पाद बढ़त हो। यह विषय बताता है कि प्रयोग की संस्कृति मूल्यवान है, लेकिन बाजार, समय और उपयोगकर्ता व्यवहार की समझ उसके लिए उतनी ही जरूरी है। चौथा, खोज कंपनी से बहुक्षेत्रीय प्रौद्योगिकी शक्ति बनने का विस्तार। लेवी गूगल के विस्तार को अलग अलग अधिग्रहणों और उत्पादों की सूची की तरह पेश नहीं करते। वे दिखाते हैं कि खोज से बनी तकनीकी क्षमता, विज्ञापन से मिला धन और दुनिया की सूचना को व्यवस्थित करने का व्यापक लक्ष्य कंपनी को नए क्षेत्रों की ओर ले गए। एंड्रॉइड के माध्यम से मोबाइल कंप्यूटिंग, यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो, क्लाउड सेवाएं, पुस्तक, डिजिटलीकरण और स्वचालित वाहन जैसे प्रयास इस महत्वाकांक्षा के अलग रूप थे। इनमें एक साझा तर्क था, गूगल ऐसे मंचों में उपस्थित रहना चाहता था जहां लोग सूचना खोजें, बनाएं, साझा करें या डिजिटल सेवाओं का उपयोग करें। यह विस्तार रक्षात्मक भी था क्योंकि इंटरनेट का उपयोग डेस्कटॉप खोज से मोबाइल और अन्य माध्यमों की ओर बढ़ रहा था। पुस्तक यह भी संकेत देती है कि नए क्षेत्रों में प्रवेश मात्र तकनीकी विस्तार नहीं होता, हर क्षेत्र के अपने प्रतिस्पर्धी, नियम, लागत और सामाजिक प्रश्न होते हैं। उदाहरण के लिए, खुला मोबाइल मंच बनाना, वीडियो पर कॉपीराइट विवादों से निपटना या स्वचालित वाहनों की सुरक्षा पर काम करना खोज परिणाम बेहतर करने से अलग प्रकार की जिम्मेदारियां मांगता है। इस तरह गूगल की विविधता उसकी क्षमता का प्रमाण है, लेकिन उसी के साथ यह प्रश्न भी उठाती है कि एक कंपनी की सूचना और अवसंरचना पर पकड़ कितनी व्यापक होनी चाहिए। अंत में चीन, नियमन और गोपनीयता में आदर्शों तथा शक्ति की परीक्षा। पुस्तक का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वह गूगल की संस्कृति को उसके घोषित आदर्शों तक सीमित नहीं रखती। चीन के संदर्भ में कंपनी को स्थानीय सेंसरशिप, बाजार तक पहुंच और सूचना की स्वतंत्रता के बीच कठिन चुनावों का सामना करना पड़ा। लेविस प्रसंग के जरिए दिखाते हैं कि वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के लिए सिद्धांत और व्यावसायिक अवसर अक्सर सीधे टकराते हैं और नेतृत्व के भीतर भी इस पर मतभेद हो सकते हैं। यूरोप तथा अन्य जगहों में नियामकीय जांच का संदर्भ एक दूसरे तनाव को सामने लाता है। जिस खोज और विज्ञापन प्रणाली को उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी माना गया, वही बाजार प्रभुत्व के कारण प्रतिस्पर्धा के लिए चिंता का विषय बन सकती है। गोपनीयता का प्रश्न भी इसी पैमाने से जुड़ा है। बेहतर निजीकरण और उपयोगी सेवाओं के लिए अधिक डेटा जुटाना संभव है, पर उपयोगकर्ता को यह जानने और नियंत्रित करने का अधिकार चाहिए कि उसके बारे में क्या एकत्र हो रहा है और उसका उपयोग कैसे हो रहा है। पुस्तक की एक सीमा यह मानी जा सकती है कि उसे कंपनी तक बहुत निकट पहुंच मिली, जिससे उसका स्वर कई बार अपेक्षाकृत सहानुभूतिपूर्ण लगता है। फिर भी ये प्रसंग उसके मूल्य को बढ़ाते हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि इंटरनेट युग की शक्ति केवल शानदार उत्पाद बनाने का मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक विश्वास, नियमों और लोकतांत्रिक जवाबदेही का भी प्रश्न है। निष्कर्ष में, इन द प्लेक्स उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो गूगल को केवल एक खोज इंजन के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक इंटरनेट की संरचना बदलने वाली संस्था के रूप में समझना चाहते हैं। प्रौद्योगिकी, व्यवसाय, मीडिया, डिजिटल विज्ञापन, उत्पाद प्रबंधन और संगठन संस्कृति में रुचि रखने वाले पाठकों को इसमें ठोस संदर्भ मिलेगा। उद्यमी और प्रबंधक इससे यह देख सकते हैं कि प्रतिभा भर्ती, प्रयोग, डेटा और दीर्घकालिक अवसंरचना निवेश कैसे मिलकर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बना सकते हैं। साथ ही उन्हें यह सावधानी भी मिलती है कि तेज वृद्धि के साथ संस्कृति, समन्वय और सार्वजनिक जिम्मेदारी की समस्याएं बढ़ती हैं। विद्यार्थियों के लिए यह इंटरनेट अर्थव्यवस्था के विकास का उपयोगी प्रवेश बिंदु है, क्योंकि यह तकनीकी विचारों को उनके व्यावसायिक और सामाजिक परिणामों से जोड़ती है। समान कॉरपोरेट इतिहासों की तुलना में इसकी अलग पहचान लेवी की अंदरूनी पहुंच और तकनीकी पत्रकारिता की स्पष्टता है। वह संस्थापकों, इंजीनियरों, उत्पादों और रणनीतिक विकल्पों को एक ऐसी कहानी में जोड़ते हैं जिसमें खोज, एल्गोरिदम, विज्ञापन बाजार और वैश्विक नीति एक दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं। पुस्तक का मूल प्रकाशन गूगल के विकास के एक अपेक्षाकृत शुरुआती चरण को दर्ज करता है, इसलिए आज के पाठक को इसके निष्कर्षों को बाद की घटनाओं के संदर्भ में भी देखना चाहिए। फिर भी यही ऐतिहासिक दूरी इसका लाभ है। यह दिखाती है कि जिन सिद्धांतों ने कंपनी को उभारा, वही सिद्धांत बड़े पैमाने पर लागू होने पर नए विवाद और कठिन प्रश्न क्यों पैदा करते हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं स्टीवन लेवी, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।